कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं कुछ जान पारी थोड़ी सी सजा मुड़े जा साथ हमारे
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमा नेगी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दिशा। जी हाँ, वही शो जिसमें होती है आपके लिए इन्फॉर्मेशन
और होता है ढेर सारा मनोरंजन। क्यों, मैंने सही कहा ना प्रेमा?
बिल्कुल जगत, वैसे देखो तुम आज फिर लेट हो गए।
ओहो, लेकिन प्रेमा देखो आज मेरे पास देर से आने की वजह है।
अच्छा,
वो क्या है ना प्रेमा, आज मैं अपने एक दोस्त के घर होता हुआ आ रहा हूँ। उम्र में हालांकि वो मुझसे कुछ बड़े हैं, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
अच्छा, तो?
तो क्या, आज जब मैं उनके घर गया तो बातों बातों में एक बात सामने आ गई।
कैसी बात जगत?
बात बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेमा, इसलिए उसे मैं अभी नहीं बल्कि अपने सेगमेंट जानो अनजाने में बताऊंगा, ताकि हमारे श्रोता भी उस बात को ध्यान से सुन सकें और उस पर विचार कर सकें।
तो फिर देर किस बात की है जगत, बिना देर किए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जानो अनजाने की तरफ।
बिल्कुल।
हाँ तो जगत, अब बताओ आखिर क्या बात हुई तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच?
वो क्या है प्रेमा कि मेरे जो दोस्त हैं ब्रजेश शर्मा जी, उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं।
तो
क्या, बातों ही बातों में वो मुझसे कह बैठे कि वैसे तो उनके बच्चे भी उनकी तरह ही समझदार हैं, लेकिन उम्र का ये दौर ऐसा है कि कब बच्चे सही रास्ते से भटक जाएं पता ही नहीं चलता।
तो तुमने क्या कहा?
भाई मैंने तो उन्हें यही कहा कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त वो हर इंसान में एक ऐसा दोस्त तलाश कर रहे होते हैं जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकें। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अब मैं अपने बच्चों के लिए ऐसे दोस्त कहाँ से लाऊं भाई।
फिर तुमने क्या कहा?
मैंने कहा आपको उनके लिए दोस्त तलाशने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जरूरत है खुद अपने बच्चों का दोस्त बनने की, और आप एक दोस्त बनकर अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं।
हाँ, और अगर बच्चों को अपने माता पिता में ही एक अच्छा दोस्त मिल जाता है तो उनसे वो सब बातें शेयर कर सकते हैं जिन्हें कहते हुए वो झिझकते हैं, और बाद में ये सब बच्चों के गलत रास्ते पर चलने की वजह भी बन जाती है।
दोस्तों, ये समस्या सिर्फ एक ब्रजेश शर्मा जी की ही नहीं है, बल्कि सभी माता पिता को ये डर होता है। ऐसे में जरूरत होती है कि बच्चे जब बड़े हो रहे हों तो आप सिर्फ उनके माता पिता ही मत बने रहिए, बल्कि उनके दोस्त बनकर उनके विचारों को जानिए, उन्हें सही गलत बात का ज्ञान कराइए और उन्हें उम्र के इस दौर में भटकाव से बचाइए।
साथ ही दोस्तों, आप अपने बच्चों को उनकी बात कहने का पूरा मौका दें, उन्हें इतना न डराएं कि वो अपने मन की बात कह ही ना पाए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उन्हें सही गलत के बारे में बताइए।
अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल, तू मेरी जान।
और दोस्तों, मुझे मालूम है कि अब आप बेसब्री से हमारे अगले सेगमेंट का इंतजार कर रहे होंगे।
तुम्हें कैसे पता जगत?
अरे प्रेमा, इनामों का मामला जो है।
हाँ भाई, ये तो है।
तो ठीक है ना, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट भेजा फ्राई की तरफ और जानते हैं कौन बने हैं हमारे आज के विजेता।
दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को HIV संक्रमण कैसे होता है, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि इंजेक्शन की एक ही सुई के प्रयोग से।
और दोस्तों, एपिसोड 20 का सही जवाब देकर हमारे आज के भाग्यशाली विजेता बने हैं श्याम प्रसाद ठाकुर वेस्ट बंगाल से।
श्याम जी, आपको हमारी तरफ से ये भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की।
और आज का सवाल है, एक HIV संक्रमित माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म कब दे सकती है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, एक HIV संक्रमित माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म कब दे सकती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, अगर वो 35 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे, बी, अगर उसका पति HIV नेगेटिव हो, सी, अगर वो रोज प्रार्थना करें, और डी, अगर वो डॉक्टर के निर्देश अनुसार ART लेती रहे। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए। ए, अगर वो 35 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे। बी, अगर उसका पति HIV नेगेटिव हो। सी, अगर वो रोज प्रार्थना करें। और डी, अगर वो डॉक्टर के निर्देश अनुसार ART लेती रहे।
तो दोस्तों, ये है हमारा आज का सवाल, और इस सवाल का जवाब देने के लिए फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND24, भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D, और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर, यानी 9717678223।
और अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का। दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता की खाई आज भी बरकरार है। इस पुरुष प्रधान समाज में जब एक आदमी कोई गलती करता है तो उसे ये कहकर कि वो पुरुष है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर वही गलती एक महिला करती है तो ये समाज उसे हीन भावना से देखता है।
बिल्कुल सही कहा तुमने प्रेमा। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है नसीम जी। नसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में।
शुक्रिया।
सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दीजिए।
मैं नसीम हूँ और पिछले 19 सालों से महिला मुद्दों पर महिला हिंसा और अधिकारों को लेकर काम कर रही हूँ।
नसीम जी, हमारा आपसे पहला सवाल है कि जेंडर भेदभाव क्या है?
जेंडर भेदभाव को हम इस तरह देख सकते हैं कि समाज का ऐसा कोई भी व्यवहार जो कि हमें दोयम दर्जे में होने का एहसास दिलाए, और वो भी इसलिए क्योंकि हम लड़की हैं, उसी को हम जेंडर भेदभाव मानते हैं।
और इससे महिलाओं के लिए HIV का रिस्क क्यों पैदा होता है?
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम दोयम दर्जे में समझे जाते हैं, तो जिस तरह से भी पति परमेश्वर है मिसाल के तौर पे, तो वो जिस तरह भी जिस स्थिति में भी संबंध बनाना चाहेगा, पत्नी रोक नहीं लगा सकती। चाहे वो जानती भी हो कि मेरा पति संक्रमित है, उसके बावजूद उसको ये अधिकार नहीं है कि वो ना कह सके। यही वजह है कि ये जेंडर भेदभाव जो है HIV की बढ़ती संख्या में बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है।
नसीम जी, महिला हिंसा और HIV के बीच क्या संबंध है?
संबंध की जहाँ तक बात है, क्योंकि अगर पति संक्रमित है HIV से, उसके बावजूद वो पत्नी के साथ संबंध बनाता है बिना किसी सुरक्षा के, और पत्नी भी जानती है, लेकिन क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है और वो ना नहीं कह सकती है, ना तो धर्म और ना समाज उसको ये अधिकार दिए है, ना वो मानसिक रूप से तैयार है इनकार करने के लिए। यही कारण है कि महिला हिंसा और HIV का घनिष्ठ संबंध है।
अच्छा, भारत में ज्यादातर महिलाओं का अपने हस्बैंड के साथ ही शारीरिक संबंध होता है, फिर भी महिलाएं HIV पॉजिटिव पाई जाती हैं, ऐसा क्यों है?
देखिए, इसको दो तरह से ले सकते हैं। अगर शादीशुदा रिश्तों में आप देखिए तो उसमें पत्नी बेशक ज्यादा लोगों से रिश्ता नहीं रख रही है, लेकिन पति तो आजाद है, पुरुष प्रधानता है समाज में, वो तो सब जगह जा रहा है, चाहे दूसरी औरतों के साथ, चाहे वो यौन कर्मियों के साथ। वापस संक्रमण तो महिला तक पहुंच रहा है उसकी पत्नी के पास, तो इसलिए महिलाओं में संक्रमण ज्यादा पाया जाता है, और ये हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण ये बन जाता है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी महिलाएं इससे संक्रमित हो जाती हैं।
नसीम जी, आप हमारे शो पर आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया। मेरे लिए भी ये बहुत अहम मौका है कि जो कुछ भी मेरी सोच या ख्याल जो थोड़े से तजुर्बे के आधार पर है कि लोगों तक पहुँच पाया, तो इसके लिए मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया बहुत।
तले अजनबी हो जाते हैं रिश्ते, बिस्तर पे चादरों से चुप सो जाते हैं रिश्ते, ढूंढे से भी इनमें नहीं।
और दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी चिट्ठी की।
दोस्तों, आपकी बात में हम शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के SMS के द्वारा भेजे गए सवालों को।
जी हाँ दोस्तों, और हमारा पहला मैसेज है बिहार से। ये लिखते हैं कि मैंने STD टेस्ट करवाया है जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो क्या अभी भी मुझे HIV टेस्ट की जरूरत है? बिल्कुल दोस्त, आपको सुरक्षा के लिहाज से HIV टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टेस्ट अलग अलग हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको यौन रोग ना हो तो HIV नहीं हो सकता।
बिल्कुल सही कहा प्रेमा ने। दोस्त, आपको HIV टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और प्रेमा, हमारे एक दूसरे श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके लिप्स पर किस किया, मुझे नहीं पता कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं, क्या इससे मुझे HIV का कोई खतरा है? नहीं दोस्त, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि किसी को लिप किस करने से HIV का खतरा नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, आपको HIV का कोई खतरा नहीं है।
और जगत, हमारा अगला सवाल है वेस्ट बंगाल से, जो लिखते हैं कि जब मैं 14 साल का था उस समय मैंने 12 साल की लड़की के साथ रिलेशन रखा था, क्या उससे उन्हें HIV/AIDS हो सकता है? दोस्त, इसमें समझाना ये जरूरी है कि आपके रिश्ते में यौन संबंध शामिल था या नहीं। अगर आपने किसी भी प्रकार का असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाया है तो आपको HIV का खतरा बिल्कुल नहीं है।
और प्रेमा, हमारा आज का आखिरी सवाल है कि क्या गे के साथ यौन संबंध बनाने से HIV का खतरा है? दोस्त, यौन संबंध चाहे विपरीत लैंगिक हो या समलैंगिक, अगर आपने असुरक्षित यौन संबंध बनाया है तो उससे आपको HIV का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमसे HIV के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो अपना सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें चिट्ठी व ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYDISHAA@gmail.com।
और दोस्तों, जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद अगर आपको जानकारी देना है तो मनोरंजन करना भी है।
बिल्कुल सही प्रेमा। तो दोस्तों, आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए आइए हम सभी सुनते हैं धारावाहिक जीवन की राह की 24वीं कड़ी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना कि जयपाल के टैक्सी मालिक को जयपाल द्वारा भिजवाया गया कानूनी नोटिस मिल जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। वो मंगल और वीरभूषण को कहीं से भी जयपाल को ढूंढ लाने के लिए कहता है।
इधर कॉलेज के हॉस्टल में एक और नया लड़का सिद्धार्थ आता है। अजीत और पिंटो सिद्धार्थ को भी नशे के जाल में फंसाने का विचार बनाते हैं। उधर राजन और शीला डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर शीला को बताती है कि वो HIV पॉजिटिव है और वो टूट जाती है। आइए अब सुनते हैं आगे।
ए भगवान, मुझे इस जयपाल के बच्चे ने कहां फंसा दिया।
मालिक।
जयपाल, अच्छा हुआ तू आ गया।
मालिक, साफ साफ कहिए मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है।
हाँ जयपाल, ये ले।
ये क्या है मालिक।
इस लिफाफे में मैंने तेरे अब तक की सारी तनख्वाह रख दी है, मैंने एक भी पैसा नहीं काटा।
अरे मंगल, ये मालिक क्या कर रहे हैं।
और हाँ, तू आज से बल्कि अभी से यहाँ काम शुरू कर रहा है।
अरे भैया वीरभूषण, ये फिर से हमारे साथ काम करेगा, और सिकंदर का भतीजा।
देखिए मालिक, मुझे आपके यहाँ काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ काम करने वाले बाकी लोगों को मेरे साथ काम करने में परेशानी हो सकती है।
किसको परेशानी होगी मुझे बता।
मालिक, हमें जयपाल के साथ काम करना मंजूर नहीं है।
वीरभूषण।
और मालिक हमको भी।
मंगल तू भी।
और मालिक, सिर्फ हम दोनों को ही नहीं बल्कि किसी को भी जयपाल के साथ काम करना मंजूर नहीं है।
अच्छा, तो ये बात है, जिसको भी जयपाल का यहाँ काम करना पसंद नहीं वो आज यहाँ से काम छोड़कर जा सकता है, लेकिन जयपाल यही काम करेगा।
भैया वीरभूषण, ये तो पासा उल्टा पड़ गया।
मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मालिक ये HIV पॉजिटिव है ना।
अरे तो क्या हुआ अगर जयपाल HIV पॉजिटिव है।
सूरज।
हाँ जयपाल, मुझे पता था शायद यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं वकील साहब को साथ लेकर सीधा यहाँ आ गया।
क्या मर गए मंगल।
देखिए, आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर आप सब लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं।
इसलिए ताकि जयपाल के साथ काम करते हुए कहीं हम भी HIV पॉजिटिव न हो जाएं।
क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। HIV साथ काम करने से, साथ रहने से, साथ खाने पीने से नहीं फैलता।
अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि कैसे फैलता है।
देखो, HIV के फैलने की मुख्य चार वजह है। HIV संक्रमित रक्त हमारे शरीर में जाने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, एक ही सिरिंज यानी सुई के इस्तेमाल से, और एक HIV पॉजिटिव गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को।
समझ आ गया तुम सबको। अगर अभी भी किसी को जयपाल के साथ काम करने से इनकार है तो?
नहीं मालिक, हमें सूरज की बात समझ आ गई है। जयपाल हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे यहाँ काम करने से कोई एतराज नहीं है।
हाँ जयपाल भैया, हमको भी माफ कर दो, तुम हमारे साथ काम कर सकते हो।
वीरभूषण, मंगल, देखो भाई, मैं तो तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। जैसा तुमने मेरे साथ किया है, इस तरह का रवैया अक्सर लोग किसी भी एचआईवी व्यक्ति के साथ कर जाते हैं। लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बस अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
और जयपाल मुझे भी माफ कर दो, मैं इन सब की बातों में आ गया था।
नहीं मालिक, मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं।
तो जयपाल ये कानूनी नोटिस?
वकील साहब, क्या अभी भी इसकी कोई जरूरत है?
ये नोटिस तो आप ही के पास रहेगा। हाँ, मैं इसे कोर्ट में रद्द करवा दूंगा।
जी मेहरबानी। तो जयपाल तुम काम शुरू कर रहे हो ना?
मालिक मुझे वो क्या है ना मालिक, अब मैं अपना सारा समय अपने बीवी बच्चों को देना चाहता हूँ। बहुत सालों से उनसे दूर रहा हूँ मालिक। मैं चाहता हूँ कि मैं गांव चला जाऊँ, उनके साथ रहूँ और वहीं कोई अपना काम धंधा शुरू कर दूँ।
देखो जयपाल, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम करो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जब भी तुम शहर वापस आओ और तुम्हें काम की जरूरत हो, फौरन मेरे पास चले आना। तुम्हारे लिए मेरा टैक्सी स्टैंड हमेशा खुला है।
जी मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कौन है? अरे भाई आ रहा हूँ। अरे आप तो वही हैं जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी।
हाँ, वैसे मेरा नाम पिंटो है।
ओ हाय पिंटो, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आइए आप बैठिए ना।
हाँ जरूर, लेकिन प्लीज ये आप कहकर बात मत करो। हम सब एक ही हॉस्टल में दोस्तों की तरह रहते हैं, तो ऐसे में ये आप जमता नहीं है।
ओके पिंटो।
ये हुई ना बात।
अच्छा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक स्मोक कर सकता हूँ।
स्मोक?
स्मोक यानी नशा।
इसे तुम नशा कहते हो? अरे यार, इसे नशा कहाँ कहते हैं, ये तो बहुत मामूली सी बात है, सब करते हैं। यहाँ तो इससे भी बड़े बड़े नशे करते हैं।
अच्छा, कोई एतराज नहीं करता?
एतराज तो कोई तब करेगा ना जब किसी को पता चलेगा। चोरी छिपे सब चलता है यार।
यार पिंटो, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं?
हाँ बोलना। अरे बिंदास बोल।
पिंटो ये छोटा मोटा नशा तो मैं चोरी छुपे कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नशा
तेरे को करना है तो चिंता मत कर, तो मेरे साथ रह, तेरे को हर तरह की ऐश कराऊंगा। ऐसे रंगीन सपने जो तूने कभी देखे तो क्या सोचे तक नहीं होंगे, ऐसे सपने दिखाऊंगा। चल आ, तेरे को लेकर चलता हूँ।
लेकिन कहाँ?
अरे तू चल तो सही।
अच्छा बच्चों, सबने परीक्षा की डेट शीट उतार ली है ना?
हाँ सर।
तो परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना, और हाँ तुम लोगों के रिजल्ट पिछली बार की तरह ही फर्स्ट क्लास आने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सर।
सुमन, सुमन
क्या है मोहित, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती?
लेकिन सुमन ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी नाराज हो?
अच्छा अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। इतने भोले मत बनो मोहित, उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ क्या वो सही था?
तो तुम उस बात के लिए नाराज हो? देखो आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो।
नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
सुमन, सुमन तुम्हें मेरी कसम, तुम हर समय मेरे ख्यालों में रहती हो। तुम इस तरह रूठ जाओगी तो मैं पागल हो जाऊंगा।
क्या वे सिर पैर की बातें कर रहे हो?
सुमन अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं हो ना तो जिंदगी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगा।
नहीं मोहित ऐसा मत कहो, तुम मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते।
तो बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं?
मुझे नहीं पता, अभी मुझे जाना है।
सुमन, सुमन प्लीज, सुमन ऐसा मत करो।
बीबी जी, ओ धनवंती बीबी जी।
अरे कटोरी बाहर क्यों खड़ी है, आना अंदर आजा, आजा आ बैठ यहाँ।
नहीं नहीं बीबी जी, मैं तो नीचे ही ठीक हूँ।
अरे पागल हो गई है क्या, चारपाई पर बैठना।
अरे बीबी जी ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मुझ छोटी जाति की छोरी को इतना मान सम्मान देती हो, वरना लोग वो तो हमसे ऐसी दूरी बनाकर चलते हैं जैसे हम कोई सांप और बिच्छू हो, पास आएंगे तो डंक मार जाएंगे।
अरे कटोरी तू ऐसा क्यों सोचती है, वैसे भी जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, उनकी सोच ही छोटी है।
अरे हाँ, ये लो बीबी जी, 400 रुपए हैं, इन्हें अपने पास रख लो।
ला। अच्छा कटोरी, एक बात बता, तू मेरे पास हर महीने 400-500 रुपए जमा करवाती है, पर कभी तूने ये नहीं बताया कि इन पैसों का तू करेगी क्या?
करूँगी क्या बीबी जी, कभी मुसीबत में काम ही आ जाएंगे। अब मेरे माँ बाप तो है नहीं जो मेरा ख्याल रखें, और शादी की रेखा तो लगता है ऊपर वाला मेरे हाथ में बनाना ही भूल गया है।
चिंता मत कर कटोरी, ऊपर वाले ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है, जब उसकी मर्जी होगी तो तेरी शादी भी हो जाएगी।
देखते हैं बीबी जी, अब तो शादी की उम्र भी निकलती जा रही है।
तू कुछ भी कह कटोरी, पर एक बात तो तेरे बारे में माननी पड़ेगी, भले ही तेरी उम्र इतनी हो गई है, पर आज तक तेरे बारे में कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं सुना।
अरे बीबी जी, आपको लोगों का क्या मालूम, गिद्धों की तरह नजर गड़ाए रहते हैं मेरी बोटियां नोचने के लिए। वो तो मैं ही सख्त पड़ी हुई हूँ जो किसी को अपने आसपास तक नहीं फटकने देती।
कटोरी, अगर तेरे जैसी समझदार हर लड़की हो जाए ना, तो लड़की का जन्म ही सुधर जाए।
अरे बीबी जी, इसमें क्या है, लड़के और लड़कियों से गलती नासमझी में ही होती है, लेकिन अगर उन्हें समय रहते ही सब कुछ समझा दिया जाए कि उनकी शरीर की क्या मर्यादाएं हैं, तो लड़के और लड़कियां ऐसी गलती कभी करें ही ना।
सही कहती है कटोरी।
अच्छा बीबी जी, अब मैं चलती हूँ, अभी दो घरों में और जाना है।
ठीक है कटोरी।
ऐ मसक कली उड़ मटक कली मटक कली, ऐ मसक कली उड़ मटक कली मटक।
दोस्तों कहते हैं कि इश्क पर किसी का जोर नहीं, लेकिन भाई समय पर भी किसी का जोर नहीं है। मतलब ये है दोस्तों कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम नई दिशा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से ऑडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है,
और जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
और साथ ही साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवानी, मंदाकिनी की आवाज सामुदायिक रेडियो और सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करते हैं।
और दोस्तों, अब मुझे और जगत को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत,
नमस्कार।